సహ నో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవ మహేశ్వర గురురేవ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సమస్త జన కళ్యాణే నిరతం కరుణామయం నమామి చిన్మయం దేవం సద్గురుం బ్రహ్మ విద్వరం వసుదేవ సుతం దేవం కంసచారూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
కృష్ణం వందే
జగద్గురుం.
హమ్నే పహలే దేఖా థా కి దోనో సేనాయే ఆ గయీ హై, ఆమ్నే సామ్నే ఖడీ హై, ఔర్ संजय जो है रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं धृतराष्ट्र को क्या हो रहा है वहाँ पर. धृतराष्ट्र ने पूछा कि दोनों सेनाएं खड़ी हैं, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं ये बताओ, मामका मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं. पांडव उनका नाम ले लिया, एज इफ पांडव जो है उनसे अलग हैं, मामका पांडव. उसके बाद में दुर्योधन आता है किसके पास, आचार्य द्रोण के पास में, और वो बहुत डरा हुआ है और आके वो कहता है कि आपने देखा है कि ये पांडव पक्ष की तरफ में उन्होंने जो व्यूह रचना की है, जैसे आर्मी का अरेंजमेंट किया है, व्यूह रचना आपने देखा है, पता है किसने बनाया है. बोले आपके शिष्य ने बनाया है. कौन शिष्य है, बोले दृष्टद्युम्न उसने बनाया है. तो ये कटाक्ष था उनके ऊपर में कि आपका शिष्य उधर ये कर रहा है, आपने किसको शिष्य बनाया, वो आपका आज शत्रु बना हुआ है. इसके बाद उन्होंने बताया, दुर्योधन बताता है कि कितने महारथी उस तरफ में हैं, पांडव के तरफ उसने 17 महारथी देखे उस तरफ में, और हम लोगों ने देखा था महारथी किसको कहते हैं, तो 17 महारथी जो है उस तरफ में देखे. फिर वो कहता है अपनी तरफ वाले में कौन है वो भी मैं बताता हूँ, मगर उसके पहले उसने और एक बात कह दी, वो क्या, अस्माकम तो विशिष्टांत तन निबोध द्विजोत्तम, यू आर द्विज उत्तम, यू आर ब्राह्मण. द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे ही, शिक्षण वगैरह करते तो ब्राह्मण थे ही, तो उनको इस युद्ध में आकर ब्राह्मण कहने की क्या दरकार थी. इसकी ये दरकार थी कि यू आर ब्राह्मण, आपको नहीं पता है ये युद्ध भूमि है, क्षत्रियों का काम है, आपको नहीं पता है इसके बारे में. तब जो है द्रोणाचार्य चुप रहे, उनके कान लाल हो गए मगर कुछ बोले नहीं. तो दुर्योधन ने देखा, साथ ही साथ उसने कहा अब हमारी तरफ में कौन कौन महारथी हैं उनको भी थोड़ा सा बता देते हैं. तो साथ साथ उन्होंने कहा भगवान आप हैं, सबसे पहले उनका नाम ले लिया, फिर 7 नाम लिए जिसमें 4 आदमी जो हैं उनके ही थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य कृपी और 4 नाम देख बताए, 7 नामों में उनको अब वो फेवर कर रहा है. उसके बाद में कहता है कि अब अपर्याप्तम, हमारी सेना कितनी है, इनफाइनाइट है, और उनकी कितनी है, पर्याप्त है. एक मीनिंग ये हुआ, दूसरा पर्याप्त मतलब उनकी सफिशियंट है, हमारी इनसफिशियंट है. ये उसके सब डर के भाव में, उसके अंदर डर बहुत आ गया था. उसके बाद में वो कहते हैं कि हमारी तरफ में भीष्म पिता देख रहे हैं, और इतना कहते कहते कि वो इतना डर चुका था कि भीष्म पिता मैंने देखा कि अगर हमने अभी शंख नहीं बजाया तो ये आदमी बैठ जाएगा, अभी भी गिर जाएगा. उन्होंने तुरंत शंख बजा दिया भीष्म पिता ने, और संजय कहते हैं कि उसमें एक तुमुल शब्द हुआ, टेरिबल साउंड हुआ, बस चुप. दूसरी तरफ इधर का शंख बज चुका है, शंख बजने का मतलब युद्ध का प्रारंभ, दूसरी तरफ का युद्ध प्रारंभ, किसने पहले शंख बजाया, माधव ने, भगवान कृष्ण ने बजाया, इधर किसने बजाया, भीष्म पितामह ने. तो युद्ध की घोषणा पहले किसने की, जो अधर्मी है जो अधर्मी होते हैं वही जो है सबसे पहले उनकी आवाज़ गले की आवाज़ ज़्यादा होती है। जब आपके मोहल्ले में कभी कुछ झगड़ा उगड़ा होता है ना तो आप देखिएगा जो अधर्मी लोग हैं ना उनकी आवाज़ बहुत जोर ज़्यादा होती है। इसके बाद में उन्होंने किसने किसने कौन कौन से शंख बजाए ये पूरा विवरण दिया। उस तरफ में किसने किसने बजाया उसका विवरण संजय नहीं देता है, इस तरफ में किसने किसने बजाया सबका पूरा विवरण उसने दिया। और फिर कहता है कितना शब्द हुआ, बोले स घोषो धार्थ राष्ट्रानम हृदयानी बदारयत, बोले उनके दिल जो है विदीर्ण हो गए, उनके हार्ट जो है वो फट गए, इतनी शब्द हुआ। और कितना न नभस्त पृथ्वीम चैव तुमलो विनादयन, इतना गुंजन हुआ कि आकाश और पृथ्वी तक कांपने लगी, इतनी जोर की आवाज हुई। फिर उसके बाद में अथ बभिस्थान दृष्टवा धातराष्ट्रन कपि ध्वज प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम पांडव, जब दोनों तरफ के लोगों ने युद्ध की घोषणा हो गई तब सब लोग तैयार हो गए, अपने वेपन्स लेके अपने शस्त्र लेके सब तैयार हो गए। फिर धनुरुद्धम पांडव कपि ध्वज, अर्जुन फिर कहता है ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदाम महीपते, अब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहने जा रहा है, क्या कहने जा रहा है हमने इतना तक देखा था पिछली बार, अब हम आगे देखते हैं।
अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युत यावद्देतान् निरीक्षेहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे।
अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण कौन है, उनके सारथी हैं। यहाँ तो हम लोग को ऐसा सारथी मिलता नहीं है, इंडिया में हम लोग को बहुत सारथी मिलते हैं, तो कहते हैं सारथी लेके चलो हमको वहाँ लेके चलो। देखो भगवान जो है ना भक्त के दास भी हो जाते हैं, अगर कोई सही सही भक्त हो ना तो भगवान दास बन जाते हैं, जो भक्त कहेगा वो करके। ऐसी बहुत सी घटनाएँ पीछे घट चुकी हैं यहाँ पर भगवान अपने आप करके जाते हैं। यहाँ तक कि एक संत की लड़की की शादी होने वाली थी, सामान सिर पर ला के दे के गए, ऐसा करते हैं भगवान। मुक्ति दे देंगे मगर भक्ति जल्दी नहीं देते, क्यों नहीं देते, दास बनना पड़ेगा भगवान को, तो भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ अर्जुन उनका भक्त है, उसके लिए वो सारथी भी बन गए। अब अर्जुन कहता है सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत, ए अच्युत तुम जो ये दोनों सेनाओं के बीच के में हमारा रथ लेके चलो। अच्युत, अच्युत का मतलब क्या है, जो अपने स्थान से च्युत नहीं करता, जो अपनी मर्यादा से नीचे नहीं उतरता, जो अपने वचनों से नीचे नहीं गिरता, उसको अच्युत कहते हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग सब च्युत हैं, हरदम गिरते रहते हैं, हरदम जवान बदलते रहते हैं, डिसीजन बदलते रहते हैं, नहीं करते हम लोग। देखो अच्युत आप जो है मेरा रथ को वहाँ लेके चलो। क्यों अच्युत कहा, क्योंकि आप मेरे सारथी बने हो, आप ये नहीं कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, भगवान लेके चले। क्यों भाई, क्या पर्पस था, क्या कारण है, क्या देखना चाहते हो, क्यों तुम बीच में जाना चाहते हो, तो यावद एतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान, मतलब जो अवस्थितान ये लोग जो खड़े हैं युद्ध करने की इच्छा करने वाले जो यहाँ खड़े हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ, ये पर्पज है हमारा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है रथ को लेके चलो। कितनी सेना थी दोनों तरफ, आपको गिनती हमने बताई थी 11 छोनी 7 छोनी, हमने हिसाब लगा के आपको बताया था करीबन वहाँ पर 40 लाख लोग थे। अब बताओ एक जगह पर खड़े होकर 40 लाख को देखना तो मुश्किल है। तो उन्होंने कहा आप जो है दोनों सेनाओं के बीच की जो भूमि है, हमारे गुरुदेव कहते हैं नो मैंस लैंड, बीच वाले दोनों तरफ खड़े हुए हैं, बोले उसमें लेके चलो, लेके चले गए। क्या बात है, कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, कौन है मेरे से युद्ध करने वाला, कई मया मेरे से युद्ध करने वाले कौन यहां है, मैं उनको देखना चाहता हूं। आप इसलिए वहां पर रथ लेके चलिए।
योत्समानानवेक्षेहम् ये तेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः
योत्समानानं अवच्छेयहं य एते अत्र समागता, युद्ध करने की इच्छा वाले जो आए हैं वहाँ खड़े हैं, वो तो युद्ध करने के लिए आए हैं ना, तो युद्ध करने की इच्छा वाले जितने लोग भी खड़े हैं यहाँ आए हुए हैं वो कौन है, बोले धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र जितने हैं वो धार्तराष्ट्र, वो सारे के सुत जो है वहाँ आए हुए हैं, उनको देखना है, प्लस उनके हितैषी, उनके हितैषी मतलब जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि सब अपनी अपनी पावर पोजीशन चाहते हैं, जो अधर्म के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, अधर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है कि अगर अधर्म के कौरव जीत जाएंगे तो इनसे हमें कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ पावर मिल जाएगी, कुछ पोजीशन मिल जाएगी, कहीं जमींदारी मिल जाएगी, कहीं कुछ मिल जाएगा, इसलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो इनको जो सपोर्ट करने वाले हैं प्रिय चिकर्षी, इनको मैं देखना चाहता हूँ। द मैन इज नोन बाई द कंपनी की, तो इनकी कंपनी कैसी है इनको मैं देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद
संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशः गुड़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति।
संजय उवाच, अब देखो उनके भीतर में कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं संवाद हो रहा है, क्योंकि अर्जुन ने अपने सारथी कृष्ण को कहा कि रथ लेके दोनों सेनाओं के बीच में चलो। रथ चालू हो गया है, भगवान श्री कृष्ण रास्ता देख रहे हैं, वहाँ तो सीमेंटेड रास्ता नहीं है ना, गड्ढे हैं, तो रथ को चलाने के लिए थोड़ा दाहिने बाईने होके जाना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण की नज़र कहाँ है, अर्जुन की नज़र कहाँ है, उसने महारथी देखने हैं, कौन कौन उस तरफ खड़े हुए हैं, तो वो सब सेनाओं को देख रहा है, और इस तरफ पांडव तरफ में कौन है उनको भी देख रहा है। तो दोनों की नज़रें दो जगह पर हैं, एक की रास्ते के ऊपर है भगवान कृष्ण की, और उसकी सेना के ऊपर है। इस बीच में कोई संवाद नहीं हो रहा है, क्योंकि संवाद नहीं हो रहा है इसलिए संजय रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं। क्रिकेट मैच में जब बॉलिंग नहीं होती है तो कमेंटेटर बोलता रहता है ना कुछ तो बोलता रहता है, इसके बाद ये हुआ वो हो गया, रनिंग कमेंट्री चल रही है। संजय उवाच है एवं उक्ता ऋषिकेश गुड़ाकेशेन भारत सेनरोभयोर्मध्ये स्थापिता रथो एवं उक्ता ऋषिकेश, भगवान को ऐसा कहने के बाद अर्जुन गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेश अर्जुन, गुड़ाकेश किसको कहते हैं, जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया है उसको गुड़ाकेश कहते हैं। अपने छात्र काल में जब वो स्टूडेंट थे उस टाइम में वो बहुत कम सोते थे। दूसरा, शब्द वेदी बाण चलाने के लिए रात में प्रैक्टिस करनी होती है। शब्द वेदी बाण मतलब अंधेरा है, शब्द कहीं हुआ, शब्द सुन के आपको बाण चलाना है। तो अगर रात में चलाना है तो आपको नींद के ऊपर में जय होना चाहिए। गुड़ा के अर्जुन थे, उन्होंने वो भी प्रैक्टिस की हुई थी। सेने और उभे मध्य स्थापित रथोत्तम, वो रथ उत्तम रथ था। मैंने आपको बताया था कि वो रथ उनको किसी देवता से मिला था, वरुण देवता से मिला था। और उसके अंदर वो उत्तम रथ क्यों था कि उसमें रहने की, उसमें बैठने की, उसमें चिकित्सा की, बाण रखने की सब व्यवस्था थी, इसलिए वो उत्तम। और उसके ऊपर विजय पाना बहुत मुश्किल था, विजय नहीं कोई पा सकता। क्यों? क्योंकि कपि ध्वज, ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो विजय पाना बहुत मुश्किल था। कपि ध्वज सेन और उभय मध्य स्थापित, ऋषिकेश ने, भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा कर दिया। कहां पर खड़ा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे शाम से महिच्छता, जहां पर भीष्म पितामह थे और जहां पर द्रोणाचार्य थे। अर्जुन के लिए दोनों ही प्रिय एंड पूज्य हैं, भीष्म पितामह ग्रैंडफादर, द्रोणाचार्य गुरु, दोनों ही पूजनीय हैं और दोनों से ही उनका प्रेम है। उन दोनों के सामने जाके रथ को खड़ा कर दिया। रथ अगर दुर्योधन के सामने होता, लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती। रथ अगर कर्ण के सामने होता, लड़ाई शुरू हो जाती। रथ अगर दुशासन के सामने होता, दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े थे, कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द कहा था और दुर्योधन ने लच्छाग्रह में आग लगवाई थी, अगर इन तीनों के सामने अगर रथ को खड़ा कर देते, इमीडिएटली वहां पर युद्ध शुरू हो जाता। मगर भगवान का तो मतलब नहीं, हमको गीता पढ़ानी है, कैसे होता, फिर गीता कैसे मिलती हमें, तो उन्होंने जाके खड़ा कर दिया। ऐसे लोगों के सामने जाके खड़ा कर दिया जहां पर जाके अर्जुन को कुछ हो गया। क्या हुआ वो हम लोग आगे देखेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशा महिचताम उवाच पार्थ पश्चैतान समवेता करुण नीति। देखो पहले अध्याय में भगवान ने कहीं कुछ नहीं कहा है, एक भी भगवान उवाच वर्ड नहीं आएगा, केवल एक वर्ड आया। खड़ा करने के बाद उन्होंने कहा उवाच पार्थ पश्य, देखो तुम देखना चाहते थे ना किससे युद्ध करना है, ये यहाँ देखो समवेतान कुरुनीति, जितने भी कुरु वंश वाले लोग हैं ये खड़े हुए हैं, तुम देख लो। अब वो देख रहा है और संजय जो है वो कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री दे रहा है क्या हो रहा है। अब वो क्या देख रहा है, हमने आपको बताया था कि संजय के पास में पावर केबल जो है वो दूरदर्शन वाला पावर नहीं कि यहाँ कैमरा लगा दिया और वहाँ आप दिखाई पड़ रहा है। ये दूरदर्शन के पावर के अंदर आपके मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं वो किसी को नहीं पता लगता है, मगर संजय को हर व्यक्ति के मन में क्या विचार उठ रहे हैं वो भी उसको पता लगता था, ये उसके खासियत थी। अब वो देख रहा है कि अर्जुन को जो देख रहा है उसके मन में क्या हो रहा है।
तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्
सर्वान् बन्धुनवस्थितान्
कृपया परया विष्टः कृपया परया विष्टः विषीदन्ति निदं ब्रवीत्
तत्र पश्यत अस्थान पार्थ पार्थ देख रहा है, कुछ कह नहीं रहा अभी, देखो केवल वो देख रहा है, मगर संजय रनिंग कमेंट्री दे रहा है। क्या देख रहा है भाई? पार्थ की पितृण था कि वहां पिता और चाचा लोग खड़े हैं। ये उसके मन के विचार हैं कि ये हमारे पिता है, ये चाचा है। लोगों को देख देख के कौन क्या है ये सब वो देख रहा है। पिता महान, पिता महान, दादा भी वहाँ है उस तरफ में, फिर आचार्य हमारे गुरु भी हैं उधर, कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब वहाँ उस तरफ में खड़े हुए हैं, माँ तुला मामा लोग हैं, फिर भातृ भाई लोग हैं, 105 कौरव थे, भाई थे, सब भाई थे, पुत्रान पुत्र है, पौत्रान ग्रैंड सन्स ऑल्सो, पुत्र सन, पौत्रान ग्रैंड सन, ये सब उस तरफ खड़े हुए हैं, सखीन मित्र लोग भी हैं, ससुरा इन लॉज वो लोग भी हैं, फिर सुहृद बंधव और रिश्तेदार जो हैं वो भी हैं, सेनयो उभयोरपि, दोनों तरफ उभय सेना, इस तरफ पांडव की सेना में भी और उधर कौरव सेना में, दोनों तरफ तो सब रिश्तेदार ही हैं। क्या देखने के लिए आया था वो? वो देखने के लिए आया था कि मेरे से युद्ध करने वाले कौन कौन से महारथी इस तरफ और उस तरफ हैं, और उन महारथियों के देखने के बदले और वो देख रहा है कि उस तरफ में हमारे ससुर हैं, चाचा हैं, मामा हैं, दादा हैं, ये सब लोग हैं, सब रिश्तेदार हैं, पुत्र हैं, पौत्रान हैं, ये सब देख रहा है वो, ये उसके मन में चल रहा है। तान समिच्छ से कौनते सर्वान बंधुन अवस्थितान, बोले सबके सब तो हमारे अपने ही तैसी लोग हैं, बाहर के लोग तो नहीं है, लोग सब अपने लोग हैं। और ये जैसे ही उसके अंदर भाव आया तो दो चीज घटी, तुरंत घटी, एक तो कृपयाविष्ट हो गया, उसके अंदर कृपा का भाव बहुत आ गया, और दूसरा विषीदन इदम अब्रवीत, विषीद विषाद आ गया उसके अंदर में, शोक आ गया उसके अंदर में। ये भाव जो है मेंटल लेवल पर आए, मन के लेवल पर आए, और जैसे भी भाव कितने मजबूत होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि वो जो है अर्जुन जैसे योद्धा को भी दुर्बल बना के चले गए, उसको रुला दिया। क्या क्या घटना घटी वो हम देखेंगे अभी, मगर यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि उसके अंदर दो भाव आए, एक कृपयाविष्ट की भावना आ गई, कृपा की भावना आ गई। अर्जुन जानता था कि 12 साल से युद्ध की व्यवस्था की जा रही थी, युद्ध एक दिन में नहीं शुरू हुआ, 12 साल से तैयारियां चल रही थी, और किससे युद्ध करना है ये भी उसको पता था, क्यों करना है ये भी पता था कि हम अधर्म के प्रति युद्ध करने जा रहे हैं, और युद्ध किनके साथ करना है, हमारे अपने भाइयों के साथ ही करना है, कौरव के साथ नहीं करना है। अब वो वहां पर जाकर शत्रु को ना देखकर वहां पर अपने सब रिश्तेदारों को देख रहा है, और रिश्तेदारों को देखने के बाद में उसको ये भी पता था कि ये अधर्म को अगर हटाना है इन सबको मारना पड़ेगा, कोई भी इस रण क्षेत्र से बच के नहीं जाएगा, क्योंकि अधर्म या धर्म कहाँ रहता है? झंडा गाड़ने से धर्म अधर्म नहीं हो जाता है, धर्म अधर्म लोगों के हृदय में रहता है। अगर भगवान कृष्ण कौरवों के हृदय को बदल नहीं पाए, उन्होंने तो प्रयास किया था मगर हृदय नहीं बदल पाए, उपाय क्या? फिर युद्ध करना होगा। और कहते हैं कि जब भगवान ने शंख बजाया था, उस संघ के बजाने से जितने लोग भी वहाँ पर उस युद्ध भूमि में थे सबकी आयु को सीमित कर दिया था, सबकी आयु सीमित कर दी गई थी कि तुम इस रण क्षेत्र में जितनी देर तक खड़े हो रहोगे, मगर यहाँ से वापस घर नहीं जा सकते। उन्होंने संघ की आवाज से ही उनकी सबकी लाइफ जो है खींच ली थी, सबकी जो है आयु खींच ली थी। अर्जुन को भी ये पता था कि ये युद्ध कैसा होगा, सारे के सारे ये लोग मारे जाएंगे। चूंकि ये मारे जाएंगे और वो खड़ा किसके सामने है, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इन दोनों से उनको बहुत प्यार था। चूंकि इन दोनों से प्यार था इस वास्ते उसके अंदर कृपा आ गई कि ये मारे जाएंगे, मेरे को मारना पड़ेगा द्रोणाचार्य को अपने गुरु को, मेरे को मारना पड़ेगा भीष्म पितामह को अपने दादा को, कृपा भाव आ गया उसके अंदर। और उसके साथ साथ शोक दुख भी उसको होने लगा, ये दो भाव आए। और दो भाव आने के बाद फिर क्या हुआ, अब अर्जुन कहता है हाँ।
अर्जुन युवाच,
अर्जुन युवाच,
दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण,
दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण,
युयुत्सुं समुपस्थितं,
युयुत्सुं समुपस्थितं,
सीदन्ति मम गात्राणि,
सीदन्ति मम गात्राणि,
मुखं च परिशुष्यति,
मुखं च परिशुष्यति,
वेपथुश्च शरीरे मे,
वेपथुश्च शरीरे मे,
रोमहर्षश्च जायते,
रोमहर्षश्च जायते। अब अर्जुन कहता है श्री कृष्ण, बीच में कोई डायलॉग नहीं हुआ, संजय कह रहा था, अर्जुन के मन में क्या भाव आया ये अर्जुन ने देख लिया, अर्जुन ने रनिंग कमेंट्री में हमें बता दिया कि उसके भीतर में क्या भाव आ रहा है। संजय ने कहा अर्जुन के मन में क्या भाव था वो सब बताया, वो क्या देख रहा था, मामा चाचा ससुर यही सब तो देख रहा था। अब अर्जुन कह रहा है दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्णम युजसम समुपस्थितम, मैं क्या देख रहा हूं, स्वजन को देख रहा हूं, दृष्ट्वा स्वजन अपने आदमी है, ये क्या देखना चाहिए था इसको, शत्रु देखना चाहिए था ना, कौन कह रहा है, अर्जुन कह रहा है दृष्ट्वा इमं, ये तो मेरे अपने आत्मीय स्वजन, युष्म समुपस्थितम, ये युद्ध करने के मेरे साथ आए हुए हैं, यहां खड़े हुए हैं, इनको देख के क्या हुआ, सीदंति मम गात्राणी, मेरा शरीर शिथिल हो गया है। दूसरा मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है, बेपुतस्य शरीरे में, मेरा शरीर कंपन कर रहा है, कांप रहा है, रोम हर्ष से जाए थे, रोमांच हो रहा है। देखो एक इमोशन वहां पर शुरू हुआ है मन में, क्या इमोशन था, कृपया का और विषाद का, क्यों शुरू हुआ, सामने में उसने अपने सब संबंधी रिलेटिव देखे, एनिमी नहीं देखा उसने, इसको हम लोग कहते हैं अर्जुन डिजीज। और ये रोग से हम सब ग्रस्त हैं, इसलिए गीता आज भी जो है इफेक्टिव है पूरी, हम सब ग्रस्त हैं उससे। हम भी जब अपने सामने देखते हैं अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को, कुछ हो जाता है, कोई खराब खबर आ जाती है, तो हमारी सीधंती मम गात्राणि नहीं होता, हाथ पांव सब ठंडे नहीं हो जाते हमारे, कोई अगर आपको कोई गलत खबर मिल जाए कुछ, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, या कुछ और कुछ हो जाए तो मुंह सूख जाता है, बात नहीं कर पाते आप, शरीर कांपने लगता है। और किसको हो रहा है, कौन सा योद्धा है, अर्जुन जैसा योद्धा, धनुर्धर ऐसा योद्धा, वो ऐसा कमजोर पड़ गया, शिथिल हो गया, उसका मुंह सूख रहा है, जिसको कहते हैं ना डिप्रेशन, अवसाद, डिप्रेशन उसको आ गया है, अवसाद हो गया उसको। बेपतस्य शरीरे रोमहर्ष जायते, और रोमांच भी हो रहा है। फिर क्या हुआ,
गांडीवं स्रंसते हस्तात्,
गांडीवं
स्रंसते हस्तात्, त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुम्, न च शक्नोम्यवस्थातुम्, भ्रमतीव च मे मनः, भ्रमतीव च मे मनः।
अब अर्जुन कहने जा रहा है कि हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए, अनुचित है युद्ध। 12 साल की तैयारी करने के बाद में अब वो ये कहने जा रहा है कि ये युद्ध अनुचित है, कृष्ण ये हमको नहीं करना चाहिए। गांडीवम संसरते, गांडीव, गांडीव क्या उसका धनुष था, उसका नाम क्या था, गांडीव। चलो थोड़ा सा गांडीव का इतिहास देख लें। गांडीव को ब्रह्मा जी ने बनाया था, ब्रह्मा जी के पास में वो गांडीव 1000 साल तक था, उसके बाद में प्रजापति के पास में वो 580 साल तक था, प्रजापति के बाद में इंद्र के पास में वो 500 साल तक था, और उसके बाद सोम के पास में, उसके पास भी 500 था, सोम चंद्रमा चंद्र देवता के पास में भी वो 500 साल था, उसके बाद वरुण लॉर्ड ऑफ ओशन लॉर्ड ऑफ वाटर्स वरुण के पास में, उनके पास में 100 साल था। वो ऐसी लकड़ी से बना हुआ था कि इतने साल के बाद भी वो ठीक था। उसकी ऊंचाई बताते हैं कि वो जो है पाम ट्री के जितना ऊंचा था, खजूर, खजूर का पेड़ देखा है ना आपने, कितना उतना ऊंचा वो धनुष था, और उसमें 108 स्ट्रिंग थे, 108, और उसको अगर एक बार टानो ना टनका तो बोलते लाइटनिंग की तरह साउंड होती थी उसमें से, और उसको उठाने की हिम्मत करने वाले केवल 5 व्यक्ति थे, कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, कर्ण थे और परशुराम और भीम, ये 5 आदमी केवल उसको उठा सकते थे। अर्जुन तो था ही, अर्जुन के हाथ में गांडीव था, ये गांडीव जो है उसको वरुण देवता ने दिया था, और वो रथ भी वरुण देवता ने उनको दिया था। ऐसा दिव्य धनुष उसके हाथ से छूट गया। कितनी देर में, जब वो युद्ध करने के, मेरे लिए कौन कौन मेरे सामने खड़े हैं, कौन कौन लड़ने वाले हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं, तब गांडीव हाथ में था। जैसे ही उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखा और उसके भाव उसमें मन में आ गया कि इनको सबको मारना है, मेरे को मारना है, फिर ये सब शुरू हो गया। फिर कहते हैं गांडीव सशस्त्र और त्वक, त्वचा क्या कर रही है, बोले जल रही है, मेरी त्वचा जल रही है। ये सब अर्जुन कह रहा है, श्री कृष्ण को कह रहा है कि मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमी अवस्था तुम, मैं अब खड़ा नहीं रह सकता, गांडीव भी गिर गया, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, शरीर कांप रहा है। भ्रमती वचे में मना, और मन स्त्रीलिंग, देखो एक भाव का सूक्ष्म शरीर, मन का भाव एक जो है स्थूल शरीर के ऊपर कितना प्रभाव डालता है वो यहां दिखाया गया है। फिर उसके बाद में और क्या कहता है अर्जुन, बहुत कुछ कहेगा अभी, क्यों हमें युद्ध नहीं करना चाहिए।
निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च पश्यामि, विपरीतानि केशव, विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि, न च श्रेयोनुपश्यामि, हत्वा स्वजनमाहवे, हत्वा स्वजनमाहवे।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, केशव। देखो एक एक जगह एक एक वर्ड जो यूज किए गए हैं ना यहाँ पर, एक एक उनका मतलब है। केशव, जिनके बाल जो हैं घुंघरालू हैं, केशव। नंबर 2, जिसने केसी असुर को मारा है उसको केशव कहते हैं। तीसरा, केशव किसको कहते हैं, क प्लस अ प्लस ई, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर है वो केशव है। के केशव, निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि च, बोले हमको जो लक्षण नजर आ रहे हैं ना वो सारे विपरीत नजर आ रहे हैं। कैसे विपरीत लक्षण, हम लोग कहते हैं ना भाई, घर से निकले बिल्ली ने रास्ता काट दिया, विपरीत लक्षण हो गए। कोई कहता है भाई एक कौवा एक दाहिने से आया एक बाएं से आ गया, आपस हो गया, गड़बड़ हो गया। कोई कहता है भाई हमको छींक आ गई, गड़बड़ हो गया, विपरीत लक्षण हो गए। कई किस्म के होते हैं, हमने इसका चेहरा देख लिया, विपरीत लक्षण हो गए, बहुत कुछ के लोगों के अंदर, समाज के अंदर सुपरस्टिशंस बहुत हैं, विपरीत लक्षण ये हो गया वो हो गया। ठीक है, ये दाहिनी आंख हमारी फड़क रही है, ये विपरीत लक्षण है, कुछ होने वाला है। तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव मैं बहुत विपरीत लक्षण उल्टे लक्षण देख रहा हूं, ये अभी कुछ यहां पर न च श्रेय अनुपश्यामि, कुछ श्रेय कल्याणकारी नहीं होने वाला है, मतलब कोई दुर्घटना घटने वाली है, श्रेय कल्याण नहीं कुछ होगा इसमें, अनुपश्यामि हमको दिखाई पड़ रहा है। हत्वा स्वजन में आवे, आवे मतलब इस रण क्षेत्र में युद्ध में स्वजन, अपने स्वजन को मारने से कोई कल्याण नहीं होने वाला है। देखो बार बार उसके भीतर में वो स्वजन 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 आ रहा, और उसको ऑलरेडी संजय ने पढ़ चुके हैं उसके मन में क्या आ रहा था, अब अपने खुद बोल रहा है, और बोलने के बाद में फिर क्या हुआ,
नकांक्षे विजयम कृष्ण, नकांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद, किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा, किं भोगैर्जीवितेन वा।
न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मेरे को विजय नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट विक्ट्री, न कांक्षे नहीं चाहिए विजय, और न च राज्यम बोले राज्य भी नहीं चाहिए, राज्य के लिए तो लड़ने आए हम, वो लोग जो है राज्य नहीं देना चाह रहे थे कौरव लोग, वनवास के बाद में वापस आए उसके बाद में राज्य देने को तैयार नहीं है, बोले राज्य भी नहीं चाहिए, विजय भी नहीं चाहिए, सुखानी चाह सुख भी नहीं चाहिए। चलो देखो ये तीन चीज के लिए जो है, ये तीन चीज प्रेरक हैं कर्म करने के लिए, किसी भी कर्म करने के पीछे ये तीन चीज प्रेरक हैं, और अर्जुन कहता है ये तीनों ही नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को विजय भी नहीं चाहिए, मेरे को राज्य भी नहीं चाहिए, मेरे को सुख भी नहीं चाहिए। कितनी निगेटिव थिंकिंग आ गई है उसके अंदर में, टोटल पैसिमिस्टिक निगेटिव थिंकिंग। किम न राज्य न गोविंदम, किम भोगैर जीवितेन वा, किम न राज्य न गोविंदम, ए गोविंद क्या होगा राज्य लेके, और प्लस भोग क्या भोगना है, जीवितेन बच के भी क्या करेंगे, किस लिए जीना है। देखो जब आदमी अवसाद में आ जाता है ना, डिप्रेशन में आ जाता है, तो ये सब उसके भीतर में भावनाएं आती हैं, ऐसे लोग सुसाइड करने को भी तैयार हो जाते हैं। अर्जुन की ऐसी स्थिति आ गई है, अवसाद में ऐसा आ गया है वो। गोविंद, गोविंद किसको कहते हैं, एक गो का सब मतलब होता है इंद्रिय, दूसरा गो का मतलब होता है पृथ्वी, तीसरा मतलब गो का होता है वेद। गोविंद, गोविंद मतलब इंद्रियों के मतलब में, जो कंट्रोलर ऑफ इंद्रिय हैं उसको गोविंद कहते हैं, जो सारे पृथ्वी के ऊपर परवेट कर रहा है उसको गोविंद कहते हैं, जो गो की जो वेद के द्वारा जाना जाता है उसको भी गोविंद कहते हैं। तो हे गोविंद मेरे को क्या है, न भोग ही जीवित है, न मेरे को अब राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं अर्जुन देखते हैं।
एषा मर्थे कांक्षितम नो, एषा मर्थे कांक्षितम नो, राज्यं भोग सुखानि च, राज्यं भोग सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे, तैमेव स्थिता युद्धे, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरं पुत्राः, आचार्य पितरं पुत्राः, तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः, मातुलः श्वशुराः पौत्राः, मातुलः श्वशुराः पौत्राः, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा, श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा।
देखो अर्जुन के अंदर जो है वासना भरी हुई थी, उसके अंदर युद्ध की पूरी वासना थी, उसका एक नाम था धनंजय भी था, क्योंकि वो राजसी यज्ञ के लिए धन को लेके आया था, इसलिए उसका नाम धनंजय भी पड़ा। वो अर्जुन अब वो कहता है मेरे को राज्य भी नहीं चाहिए, विजय भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? ये साम अर्थे कांचितम न राज्यम भोग सुखानी चाहिए। बोले जिनके लिए मैं राज्य भोग और सुख चाहता था, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस तत्वा धनानी चाहिए, वो सब तो यहां खड़े हुए हैं। देखो सारी की सारी प्रजा जितने भी मेल मेंबर थे वो सब तो यहां आए हुए हैं युद्ध में। अगर ये सारे के सारे मारे जाएंगे तो राज्य किस पर करेंगे? प्रजा कहां है? प्रजा तो चाहिए ना। तो मैं तो राज्य सुख और भोग इन लोग के लिए चाहता था और ये लोग ये सब यहां पर आके खड़े हुए हैं। ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस तत्वा धनानी चाहे, वे अपने धन को भी छोड़ के आए हैं और यहां प्राण देने को भी तैयार हैं। कौन कौन है भाई ये? बोले आचार्य, हाँ ये आचार्य हमारे हैं। उसके बाद में पितर, पुत्रा पिता हैं, पुत्र हैं, तथैव च पितामहा ग्रैंडफादर्स, वो भी बहुत से खड़े हुए हैं यहाँ पर। मातुला मामा ससुरा पौत्रा श्याला संविनाश तथा श्याला, मालूम है ना किसको कहते हैं? साला बोले वो भी हैं। ये सब तो अपने के अपने हैं, तो इनको मार के क्या होगा गोविंद? अब वो कहता है कि हमारी क्या इच्छा है?
एतान्नहन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते
एतान् न हन्तुम् इच्छामि, मैं इन लोग को अब मारना नहीं चाहता। देखो डिसीजन बदल गया, आया था सबको मारने के लिए, युद्ध करने के लिए आया था ना। ए तुम न, अब इनको नहीं मैं मारूंगा, मेरी इच्छा नहीं है मारने की। अच्छा गुणोति पे मधुसूदन, मेरे को मारते ठीक है, मेरे को मारते तब भी ठीक है। मधुसूदन, देखो मधुसूदन नाम दिया, क्यों मधुसूदन? मधु राक्षस को मारा। तो बोले आपने मधु राक्षस को मारा है, मगर ये राक्षस नहीं, ये तो मेरे संबंधी हैं, स्वजन हैं। ए मधुसूदन, आप तो राक्षस को मारने वाले हो, ये राक्षस लोग नहीं है, ये कौन है? ये सब हमारे संबंधी हैं, सब स्वजन हैं। अपि त्रैलोक के राज्यस्य हेतु किं न मही कृते, अगर कोई मेरे को त्रिलोक का राज्य दे दे, सारी पृथ्वी, सारा इंटर स्पेस, भू भुव स्व स्वर्ग, बोले तीनों भी अगर मेरे को कोई दे के हम देने को तैयार है, इनको मारो, मैं नहीं मारूंगा। त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तब भी नहीं मारूंगा। किम नु मही कृते, फिर ये हस्तिनापुर क्या है? दिल्ली तो इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह के लिए क्यों मारू मैं नहीं युद्ध करूंगा। वेरी गुड। फिर
निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याद् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः
निहत्य धार्त राष्ट्रान्नम का प्रीति स्याद् जनार्दन। हे जनार्दन, जनार्दन जन का जो अर्दन करे, अर्दन मीन्स मर्दन, मर्दन मीन्स मारना, जो जन को मारे उसको जनार्दन कहते हैं, जो माया को हटाता है उसको भी जनार्दन कहते हैं। हे जनार्दन, निहत्य धार्त राष्ट्र नाम ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उस तरफ के कौरव पक्षों को मारने से का प्रीति स्याद्, कौन सी प्रसन्नता हमको मिलने वाली है? कोई प्रसन्नता नहीं मिलने वाली है, बल्कि पापम एव आश्रय तस्मान, हम लोग को पाप लगेगा। किसको? आसमान, हम दोनों को। भगवान को भी कहता है तुमको भी पाप लगेगा। देखो अर्जुन की विचारधारा देखो और उधर दुर्योधन की विचारधारा देखो। दुर्योधन जो है दृष्ट फल के लिए लड़ाई कर रहा है कि हमको राज्य मिले, और यहां पर अर्जुन क्या देख रहा है? अदृष्ट फल। पाप अभी आने वाला नहीं है, पाप बाद में आएगा, अभी कर्म हुआ नहीं है, कर्म करने के बाद कर्म का फल आएगा। मगर वो कर्म का फल क्या होगा? अर्जुन कहता है वो पाप मिलेगा। तो निहत दात्रासन कापीति चाद जनार्दन, पापम एव आश्रय तस्मान, हम लोग को पाप मिलेगा। हत्वा एतान आतताइना, मगर एक बात अर्जुन ने बड़ी अच्छी की, बोले ये आतताई हैं, ये हम मान लेते हैं कि इन आतताइयों को मारने से हमें पाप होगा। सीधी भाषा में अगर कहें तो उसने यही कहा है, आतताइयों को मारने से पाप होगा। आतताई किसको कहते हैं? जिसको टेररिस्ट आप लोग कहते हो उसको आतताई कहते हैं। तो हमारे यहां पर कहते हैं कि अगर कोई आपको विष दे दे, भीम को उन्होंने विष दिया था, जो आपके घर में आग लगा दे, लक्षाग्रह में उन्होंने आग लगाई थी, जो जबरदस्ती आपका धन ले ले, उन्होंने उनका राज्य ले लिया था, जबरदस्ती लिया था, जो आपकी संपत्ति ले ले, जो किसी से घर से किसी की स्त्री को जबरदस्ती उठा के ले आए, तो ऐसे लोगों को आतताई कहते हैं। और मनुस्मृति में कहा गया है कि आतताई को मार डालना चाहिए, नो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, किल देम, ये मनुस्मृति कहती है। मगर इन आतताइयों को मारने के लिए अर्जुन कहता है हमें पाप लगेगा। आर्गुमेंट अर्जुन की क्या है कि इन आतताइयों को पापमेव आश्रय तस्मान हत्वा एतान आतताइन, ये आतताइया, ये मैं स्वीकार करता हूं कि आतताई ये टेररिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने ये सब काम किए हुए हैं, मगर इनको मारने से भी हमें पाप लगेगा। अच्छा,
तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुम्, तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा, स्वजनं हि कथं हत्वा, सुखी न स्या माधव।
तस्मात् न अर्हा, वी डोंट डिजर्व टू किल देम, हम लोग को नहीं मारना चाहिए, हमारे अधिकार में नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अर्हा हम तुम धातराष्ट्र संबंधना, ये धातराष्ट्र कौरव जो हैं हमारे जो जितने भी संबंधी हैं, और प्लस स्वबांधनाम और जो दूसरे भी रिलेटिव हैं इनको नहीं मारना चाहिए। स्वजनम की हतम कत्वा सुखना श्याम माधव, ये माधव कभी भी कोई आदमी अपने स्वजन को मार के कभी सुखी होता है, कोई प्रसन्न होता है? प्रश्न कर रहा है भगवान। चुप, भगवान एक शब्द नहीं बोले। देखो जब भी ऐसे भाव आते हैं ना, जो भी अवसाद वाले लोग होते हैं, हिस्ट्रिक होते हैं, आप अगर अब जाओ ना डॉक्टर के पास में, तो वो आपको बोलते रहते हैं कि बोलो बोलो और कितना, आप बोलना बंद कर दोगे ना फिर आपको उकसाते, फिर क्या हुआ, फिर आप बोलेंगे, फिर पूरी कहानी फिर आप सुनाते, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। भगवान भी चुप है, सुन रहे हैं सब, एक बार भी कुछ नहीं उसको कहा। ये इसका फर्स्ट थॉट करंट था, फर्स्ट आर्गुमेंट था कि ये सारे के सारे स्वजन हैं, इनको हमको नहीं मारना चाहिए। अब दूसरा थॉट करंट उसका आ रहा है,
यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्।
यद्यपि एते न पश्यन्ति, यद्यपि ये लोग को नहीं दिखाई पड़ रहा है, किनको? कौरव पक्ष को। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? कुलच है कृतम दोषम, कुलच है, परिवार नष्ट हो जाएंगे, इतने लोग मारे जाएंगे, इतनी फैमिली नष्ट हो जाएंगी, ये सारे परिवार नष्ट हो जाएंगे। कुलच है एक दोष, इनको नहीं नजर आ रहा। किनको? कौरव पक्ष वालों को। मित्र द्रोह, क्रुएलिटी अगेंस्ट फ्रेंड्स, सब तो अपने ही जान पहचान वाले हैं, इनके जो है क्रुएलिटी होने वाली है, इनके प्रति हम जो है दुर्व्यवहार करने वाले हैं। बोले ये इनको नहीं जाना जा रहा है। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कृष्ण को। और किनको नहीं समझ में आ रहा है? कौरव पक्ष वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो ये भी जानता है क्यों नहीं उनको समझ में आ रहा है। लोभ उपत चेतसा, ये लोग लोभी हैं। जिनको लोभ हो जाता है, जब भावना आ जाती है, कोई भी भाव आ जाता है, तो उस भाव के हिसाब से विवेक जो है ढक जाता है। आप बराबर याद रखना, जब भी आप इमोशनल हो जाएंगे ना, तो आपका विवेक ढक जाता है। जैसे आप एक तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, जब क्रोध आता है तब आपका विवेक जो है पूरा ढक जाता है। वो भी एक भाव है, एक इमोशन है। फिर आपको सामने नज़र नहीं आता कौन है, ये हमारे गुरु हैं, ये माता पिता हैं, ये हमारे से बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इनसे हमको कैसी बात करनी चाहिए। फिर आपके जबान से अपशब्द निकल ही जाते हैं। क्यों? विवेक ढक गया। अब अर्जुन का भी विवेक ढका हुआ है, ये बाद में सेकंड चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि उसका भी विवेक ढका हुआ है, क्योंकि वो भी कृपयावश हो चुका है। तो कहते हैं कि वो कौरव पक्ष वाले लोभ बच्चे सब, उनका विवेक शक्ति लोभ के कारण ढकी हुई है, उनकी कमजोरी इसको नजर आ रही है। उनमें विवेक नहीं है, वो ये चीजें नहीं देख रहे हैं कि कुल छह का दोष होने वाला है, कितनी क्या क्या असुविधा आएंगी, वो नहीं देख पा रहे हैं। मित्र के प्रति द्रोह करने जा रहे हैं, ये भी नहीं देख पा रहे हैं। फिर कहता है, देखो ज्ञान भी देता है साथ साथ,
कथम न गेयम अस्माभिः, कथम न गेयम अस्माभिः, पापादस्मान् निवर्तितुम्, पापादस्मान् निवर्तितुम्, कुलक्षयकृतं दोषं, कुलक्षयकृतं दोषं, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन।
कथं न गेयमस्माभिः, क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए? हम लोग का तो लोभ नहीं है ना, लोभ से हमारा चित्त, हमारा मन जो है ऐसा नहीं ढका हुआ है, तो हमें तो विचार करना चाहिए। किस लिए? पापात अस्मात् निवर्तितुम्, ताकि हम पाप ना कर सकें। हमें तो विचार करना चाहिए, अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है। 12 साल तक उन्होंने डिसाइड किया था युद्ध करना है, अब आके रणभूमि में कहता है, क्या हम लोग को विचार नहीं करना चाहिए? ऐसा पाप क्या हमें करना चाहिए स्वजन को मारने के लिए? बोले नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। कुलच्छय कृतं दोषं पपश्यति, प्रपश्य, हम जानने वाले हैं क्या? बोले कुलच्छय कृतं दोष, क्या क्या दोष होने वाले हैं, परिवार जब टूट जाएंगे फिर क्या क्या घटेगा। बोले हम तो जाते हैं, प्रपश्यति भी, हम तो अच्छी तरह जानने वाले हैं। जनार्दन, ये बताओ हे कृष्ण, हमको सोचना नहीं चाहिए? युद्ध भूमि में आके कह रहा है कि वी शुड गिव ए सेकेंड थॉट नाउ, हम लोग तो जानने वाले हैं, हम लोग का तो लोभ उपहित चेतस नहीं है ना, हम लोग के लोभ उपहित से मन नहीं ढका हुआ है, हमारी भावना, हमारा विवेक शक्ति एकदम क्लियर है, सो वी शुड थिंक। अच्छा, अब वो बताता है कि जब कुल छह होता है तो क्या क्या घटना घटती है, क्या क्या होगा, और आप सब के सब जो है पूरे के पूरे 100% सहमत होगे कि अर्जुन जो कहने वाला है, सब कहेंगे कि एकदम अर्जुन तो एकदम ठीक कह रहा है। देखो क्या कहता है,
कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुलधर्मा सनातनाः, कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्, अधर्मो विभवत्तुत, अधर्मो विभवत्तुत।
देखो धर्म किसको कहते हैं? धर्म उसको कहते हैं जो सबको जोड़ के रखे, उसको धर्म कहते हैं। जैसे एक तो सामान्य धर्म होता है कि आप सत्य बोलो, आपके अंदर दया होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, ये धर्म है। एक विशेष धर्म होता है, विशेष धर्म क्या है, आपके वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण का एक धर्म है, क्षत्रिय का दूसरा धर्म है, वैश्य का तीसरा धर्म है, अलग धर्म है, और शूद्र का अलग धर्म है, ये विशेष धर्म है। और एक आपातकालीन धर्म होता है, आपातकालीन धर्म है कि हम लोग सब वेजिटेरियन हैं, अब मान लो आप कहीं हिमालय पर ऊपर में चले गए, वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, आप वहाँ फंस गए, अगर आपको मांस खाना पड़े अभी आपको खा लेना चाहिए, आपातकालीन धर्म है वो। ऐसी स्थिति हो जाए, आपको अपने बचने के लिए कुछ करना पड़े तो कर लो, इसको आपातकालीन धर्म कहते हैं। तो ये कहते हैं यहाँ कि कुल छय प्रणय से कुल धर्म सनातन, कुल छय। देखो परिवार के इतने लोग जो है वहां इकट्ठे हुए हैं, ये अगर वापस नहीं गए तो वो परिवार तो टूट गया कि नहीं टूटे, उनकी लीनियस टूटी कि नहीं टूटी। जितने लोग यहाँ 40 लाख लोग जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, इनमें से 5-6-7 आदमी छोड़ के बाकी सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे, दोनों पक्ष के लोग मरेंगे। तो उतनी विधवाएं बनी कि नहीं वहां, उतने परिवार टूटे कि नहीं वहां पर, उनकी लीनियज बंद हो गई ना। तो कहते हैं कुल छय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, अगर परिवार टूटे तो उन परिवार के कुल के धर्म भी होते हैं, अपने अपने धर्म होते हैं। अब जैसे आप किसी यहां शादी करने जाते हो दूसरे परिवार में, तो आप कहते हो ना हमारे यहां ये नियम है, ऐसा है, वो कहते हैं हमारे यहां ऐसा नियम है, चली आ रही है वो परंपरा, परंपरा के हिसाब से सब कोई अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। बहुत से आपको हम सुनाते हैं कैसे कुल धर्म होते हैं, जैसे आप जनीषा जी को अगर पूछेंगे सांबर की, उनकी रेसिपी अलग है, आप और किसी से पूछेंगे सांबर की रेसिपी, उनकी थोड़ी डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है। और बेटियां जब ससुराल जाती हैं तो फोन करती हैं माँ से, आपने सांभर में क्या डाला था, कितना क्या चम्मच कितना डाला था, बताइए, है ना, सबके अलग अलग हैं कि नहीं। देखो नृत्य भी डांस भी डिफरेंट डिफरेंट है, उत्तर के डांस अलग हैं, भंगड़ा अलग है, नीचे में डिफरेंट है, भरतनाट्यम है, कथक है, मणिपुर उधर है, सबका अपने अपने अलग है, उड़ीसा का अलग है, सबके अलग अलग हैं। धोती पहनने का तरीका भी अलग अलग है, आप साउथ में धोती पहनो देखो, कुछ आदमी उसको ऐसे पहन के, औरतें पहनती है ना पीछे लगा के भी पहनती है, ऐसा भी है। अच्छा उसकी पट जो है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ राइट साइड में है कुछ लेफ्ट साइड में है। मैं बोला आपको इतना कैसे पता है? है होता है ऐसा। अच्छा उसके बाद में वैदिक चैंटिंग, देखो वैदिक चैंटिंग भी साउथ की और नॉर्थ की डिफरेंट है। वैदिक के पोर्शंस भी लोगों को, फैमिलीज को दिए गए थे अलग अलग। आपको याद होगा हमने कभी कहा होगा कि एक होता था वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। क्यों ये टाइटल हुई? वेदी मतलब उसने एक वेद को मुखस्थ करके रखा हुआ है, रोज उसको एक वेद को पूरा पढ़ता है। द्विवेदी दो वेदों को, त्रिवेदी तीन वेद, चतुर्वेदी चारों वेदों। तो ये सब कुल धर्म है। आगे वेद कैसे चलते थे? फैमिली में चलते थे, पिता ने पुत्र को सिखाया, वो लिख के नहीं होता था, सब सारा का सारा मेमोरी होता था मेमोरी के अंदर। तो ये कुल धर्म टूट जाएंगे फिर आगे किसको सिखाएंगे? कुल छय हो जाएगा अगर लीनियज टूट गई तो, गए ना सब के सब। तो कुल छह के इतने दोष उसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा पूजा भी डिफरेंट है हम लोग की, कहीं गणेश पूजा हो रही है, कहीं काली पूजा होती है, कहीं दुर्गा पूजा होती है, कहीं वैष्णो माता की पूजा होती है, कहीं कुछ पूजा करते हैं, सबकी अलग अलग विधियां ना। ये देखो सब टूट जाएगा। कुल छह, कुल छह प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभूत। अगर ये धर्म नष्ट हो गया तो फिर क्या होगा? अधर्म बढ़ जाएगा। कुल छय हुआ, धर्म अगर गिर रहा तो क्या बढ़ता है? फिर अधर्म बढ़ जाता है, तो अधर्म बढ़ जाएगा फिर क्या होगा?
अधर्माभिभवात् कृत्स्न अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णशङ्करः जायते वर्णशङ्करः
अधर्म अभिभवत् भवात् अधर्म बढ़ गया देन कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय बोले स्त्रियां दूषित हो जाएंगी क्यों दूषित हो जाएंगी देखो उनके रक्षक अब नहीं रह गए सब तो मारे गए ना वहाँ पर युद्ध में अब हम लोग कहते हैं स्त्रियां विधवा हो गई तो विधवा को देखने वाला कौन है देखो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्त्री जब वो लड़की के रूप में रहती है तो पिता देखते हैं पिता रक्षक हैं जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर कौन देखता है कौन प्रोटेक्ट करता है पति प्रोटेक्ट करता है पति के बाद में बोले पुत्र देखते हैं पुत्र प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ स्त्रियाँ ऑलवेज प्रोटेक्टेड हैं कंटिन्यूसली और एक महात्मा ने तो इतनी दूर कह दिया कि स्त्रियों को कभी जो है मृत्युदंड नहीं होता है आपने शायद ही कभी सुना होगा मैंने तो नहीं सुना है कि किसी भी स्त्री को हैंग टिल डेथ नहीं होता है क्योंकि स्त्री को अबाध्य माना गया है तो बोलते हैं कि ये जो अधर्म बढ़ गया अधर्म क्यों बढ़ा एक तो कुल धर्म चला गया कुल धर्म क्या अपनी अपनी फैमिली के जो कुल के रीतियां थी वो चली गई दूसरा क्या हुआ वर्ण धर्म चला गया वर्ण धर्म मतलब वर्ण संकर होने वाला है जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मण के अंदर आगे संबंध होता था आप लोग को अगर मालूम हो तो क्षत्रिय का क्षत्रिय वंश में होता था वैश्य का वैश्य में लोग आजकल भी ये सोचते हैं कि भाई ये कैपिटलिस्ट हैं उनके कैपिटलिस्ट के साथ में शादी होनी चाहिए फैमिली ऐसी होनी चाहिए सर्विस क्लास लोग सर्विस क्लास खोजते हैं होता है ना कैसा क्यों करते हैं वो लोग क्योंकि उनके जो है गुण कुछ मिलते हैं क्या गुण है सात्विक वाले सात्विक के पास में जाना चाहते हैं जो लिखे पढ़े लोग हैं वो लोग लिखे पढ़े लोगों के बीच में जाना चाहते हैं सात्विक जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो सोचते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में पावर है तो ऐसे किसी कुल को खोजो जिसमें उनके पास में पावर हो बिजनेसमैन बिजनेसमैन कम्युनिटी खोजता है रिलेशनशिप में तो बोले वर्ण संकर भी आने वाला है कुल धर्म भी आ गया आश्रम धर्म में भी गोलमाल हो जाएगा जिस समय आपको पढ़ना है उस समय बाप को कमाने के लिए जाना होगा फैमिली के अंदर अगर कमाने वाला न हो तो कमाना तो पड़ेगा पेट तो चलाना पड़ेगा इसीलिए आप वहाँ पर इंडिया में आप लोग देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं क्योंकि ऐसी आर्थिक परिस्थिति है करना पड़ता है उनको तो ये सब क्यों हो रहा है बोले ये सारे के सारे जो अधर्म हैं अधर्म क्यों हुए बोले क्योंकि कुल क्षय हुआ कुल के धर्म का नाश हुआ वर्ण का जाति का नाश हो रहा है और प्लस आश्रम धर्म आपको 25 साल तक पढ़ना चाहिए मगर हमारे यहाँ बहुत से लोग तो 25 साल के अंदर कमाना शुरू कर देते हैं पढ़े ही नहीं शादी पहले कर लेते हैं गृहस्थ में चले गए गृहस्थ वाले संन्यास में चले गए बहुत कम होता है रेयर होता है तो ये आश्रम बोले अधर्म बढ़ जाएगा प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय देखो स्त्रियां जो हैं इस टाइम में मोलेस्टेड होंगी उनके साथ में दुर्व्यवहार होगा जो दुराचारी लोग हैं वो जबरदस्ती उनके साथ में करेंगे तो प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय स्त्री तो दुष्टासु वार्षेण्य फिर ये स्त्रियां क्या करेंगी तो बोले उनकी वैल्यूज जो गिर जाएंगी उनके लिए कोई उपाय नहीं बचा उनको कुछ करना ही पड़ेगा तो उनकी वैल्यूज उनकी चली जाती है जायते वर्ण संकर है बोले वर्ण संकर हो गया वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण संकर कैसे होता है बोले नीडलेस सफरिंग है एक तो प्रॉपर मैच नहीं मिलेगा पहला तो आपके 40 लाख लोग गए रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल हो गया ना वर्ण संकर आपको अपने हिसाब के विचार के लोग नहीं मिलेंगे जबरदस्ती आपको शादी करनी पड़ेगी जबरदस्ती आप शादी करेंगे सब अपनी अपनी वासना के हिसाब से काम करेंगे सब अगर अपनी अपनी वासना के हिसाब से काम करेंगे, मतलब जो आपको पसंद नहीं है वो आपके पति करेंगे, जो आपके पति को पसंद है वो आप नहीं करेंगी, तो आप नहीं करेंगे तो पति क्या करेंगे, दुखी होके वो जाएंगे बाहर, जाके क्या करेंगे, टू एंड देयर सॉरो। स्त्रियां क्या करेंगी, वो तो बेचारी जा नहीं पाएंगे, वो जब पति आएंगे तो वो जवान चलाएंगी, उनके पास में शक्ति क्या है, जवान को छोड़कर और कुछ नहीं है, मसल पावर तो है नहीं, क्या करें बेचारी। तो ये दोनों का फिर क्या होगा, शोक होगा, दुख होगा कि नहीं। तो कहते हैं स्त्री से दुष्टा सुवार्षण जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर शुरू हो गया, और उनके बच्चों का क्या होगा, मिसगाइडेड, कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ पता नहीं है, फिर आगे क्या होता है देखते हैं।
संकरो नरकायैव, संकरो नरकायैव, कुलघ्नानां कुलस्य च, कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां, पतन्ति पितरो येषां, लुप्तपिण्डोदकक्रियाः, लुप्तपिण्डोदकक्रियाः।
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, बोले ये संकर जो, ये जो मिक्सचर हो गया, मिक्सचर हो गया, बोले ये क्या ले जाएगा, नरक आए, बोले नरक है, दुख ही दुख आएगा आपको, नरक आए भाई, कुलक नाम कुलस्य च, बोले कुल जो है नरक की तरफ में जा रहा है। पतंती पितरो ऐसा लुप्त पिंड उदक क्रिया, लुप्त पिंड उदक क्रिया, आपको श्राद्ध करना है, कौन करेगा, कंफ्यूजन हो गया ना वर्ण शंकर, पिता के लिए कौन श्राद्ध करेगा, कोई करने वाला नहीं है, श्राद्ध जरूर करना चाहिए, एवं क्रिश्चियंस में भी है, श्राद्ध करते हैं लोग, जो श्रद्धा से हम कर पाए, कम से कम वो कब्र के ऊपर जाके कैंडल तो जला के आते हैं, यही उनका श्राद्ध है, उनकी याद तो करते हैं, बौद्ध धर्म में उन लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे यहाँ क्या करते हैं हिंदू धर्म में, वो कहते हैं हाँ जीव एक है, जीव के लिए श्राद्ध करना चाहिए, क्यों श्राद्ध करना चाहिए, कि उनकी गति के अंदर सहायता मिलती है, आगे की जर्नी के अंदर वो सहायक होता है जो आप श्राद्ध करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं कौन, किसको मालूम है, आपने कहा इतना यहाँ दान दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इस ब्राह्मण को खिला दो, पितरों को खाना मिलेगा। तो कहते हैं कि ये श्राद्ध के बारे में जो है ये इंद्रिय अतीत विषय है, ये इंद्रियों से ग्रैस्प नहीं कर सकते, आप पकड़ नहीं सकते, तो इसका जो है हमको कहाँ मिलेगा, कौन इसके लिए हमको प्रमाण है, तो बोलते हैं वेद प्रमाण है इसके लिए, वेद अगर कहता है तो ये ठीक है। देखो भागवत में धुंधकारी की कथा आई थी ना, श्राद्ध था किया तो उसकी मुक्ति हो गई, भगवान राम ने इनका दशरथ जी का किया श्राद्ध, दशरथ का हाथ आया था आगे लेने के लिए, एकनाथ महाराज ने, उन्होंने भी श्राद्ध किया, पंडित लोगों ने कह दिया हम आपका पिता का श्राद्ध नहीं करेंगे, उन्होंने किया, वो भी रिसीव करने के लिए आए। तो ये होता है, श्राद्ध है, करना चाहिए, अगर ना करो तो बोलते पितर जो है गिर जाते हैं। पितर गिर जाने का मतलब क्या है कि देखो एंसेस्ट्रल जो रीति रिवाज चली आ रही थी ना वो टूट गई, वो टूट गई मतलब पितर गए, लीनी जो आपकी आस्ते आस्ते खराब होती चली जाएगी। पतंति पितरो ऐसा लुप्त पिंड उदको क्रिया, आपको जो श्राद्ध करने वाला ही नहीं मिलेगा। आप सोचो आप लोगों में से कितने लोग तर्पण करते हो, श्राद्ध पक्ष में कितने लोगों ने किया नहीं किया, भूल गए हम लोग, मालूम ही नहीं, यहां तो पता भी नहीं लगता है, करना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं करना चाहिए, ये पितरों के लिए जरूरी होता है।
दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः, वर्णसंकरकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्माः, उत्सादन्ते जातिधर्माः, कुलधर्माश्च शाश्वताः, कुलधर्माश्च शाश्वताः।
दोषे रहते ही कुलक नानाम वर्ण संकर कारक। ये जो दोष जितने अभी तक बताए गए थे आपको, इनसे क्या होगा? उत्सर्दन्ते जाति धर्मा, बोले जाति धर्म भी खत्म हो जाएंगे। जाति धर्म देखो, एक एक आगे जाति धर्म होता है। जैसे पारसी वालों में आपको बहुत मिलेगा, लास्ट टाइटल सोना वाला, चांदी वाला,
चूड़ी वाला,
चूड़ी वाला, रद्दी वाला, है ये सब, मतलब उनके जो है फैमिली के वो बिजनेस हैं, वो एक ही नाम करते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ पर गोल्ड स्मिथ, स्वर्णकार, फैमिली लीनिएज, जो लोग कारपेंटर हैं उनकी फैमिली कारपेंटर चली आ रही है, सीखते आ रहे हैं। जो मूर्ति बनाते हैं वो मूर्तिकार, जो मूर्ति लीनिएज चली आ रही है। बोले जाति धर्म ये भी खत्म हो जाएंगे। जब ये वर्ण संकर आएगा, जब ये कुल क्षय हो जाएगा, जब परिवार टूटेंगे, तो जाति धर्म का भी नाश हो जाएगा। उत्सर्दन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः, कुल धर्म, जाति धर्म, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो ये आपको धर्म जो पकड़ के रखने वाली चीज़ है, फैमिली को टुगेदर रखने वाली चीज़ है, वो अब बची नहीं। वो अगर नहीं रहेगी तो फिर क्या बचेगा?
उत्सन्न कुल धर्मानाम, उत्सन्न कुल धर्मानाम, मनुष्यानाम जनार्दन, मनुष्यानाम जनार्दन, नरके नियतम वासः, नरके नियतम वासः, भवतीत्यनु शुश्रुमः, भवतीत्यनु शुश्रुमः।
उत्सन्न कुल धर्मानाम, मनुष्यानाम जनार्दन, नरके नियतम वास। जब आपके ये कुल धर्म खत्म हो गए, जाति धर्म नहीं रह गया, तो फिर क्या होगा? बोले नरक वास। आपको बताया ना अभी अभी हमने, पति पत्नी दूसरे दूसरे विचारों के एक साथ होंगे, विवाह होगा, मत नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद में जैसा होता है, अमेरिका में तो डाइवोर्स रेट बहुत है, अभी इंडिया में भी बहुत होने लग गया है, वहाँ भी डाइवोर्स, कोई डाइवोर्स हो जाओ, चलो हट जाओ। उत्सन्न कुल धर्माना, मनुष्य नाम जनार्दन, नरके नियतम वास, नरके नियतम वास। बोले उसके बाद नियत नरक में वास, मतलब बहुत दीर्घ काल तक आपको फिर दुख में रहना पड़ेगा। अब बताओ, जो लोग डाइवोर्स कर लेते हैं क्या वो सुखी होते हैं? क्या नहीं होते हैं? उनकी दुख भरी लाइफ हो जाती है, सबकी, होल फैमिली की, पति पत्नी बच्चे सब दुखी। निरतम नरके नियतम वास भवती, तो ऐसा हमने सुना है, सुश्रुतम, ऐसा हमने सुना है कि ऐसा होता है। तो हम लोगों ने साइंस भी देख लिया कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों मिसमैच होता है। देखो एक समय था, अभी पता नहीं, कि पंजाब में लोग जो है कहते थे क्या, कि लड़की हो तो उसको एबॉर्शन कर दो। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत प्रचलन थी, तो वो लोग क्या करते थे, प्रेगनेंसी को अब्जॉर्ब, एबॉर्शन कर दिया। इसका क्या रिजल्ट हुआ? मेल फीमेल रेशियो बहुत डिस्टर्ब हो गया। मेल फीमेल डिस्टर्ब होने से क्या होगा? गोलमाल होगा कि नहीं होगा? बलात्कारी होगी कि नहीं होगी? लड़कियां कम, लड़के ज्यादा, क्या होगा? तो ये कंटिन्यूसली ये चलता जाएगा। इसीलिए वहां पर इंडिया में तो नहीं बताते कि प्रेगनेंसी में आपका लड़का है कि लड़की है, वहां पर इट इज ए क्राइम टू टेल, वो उसको डॉक्टर को पकड़ के ले जाएंगे। यहां तो आपको पहले बता देंगे क्या है। नरके नियतम वास भवती तुम सर, हे जनार्दन, हमने ऐसा सुना है कि ऐसे लोग बराबर दुखी रहते हैं, और दुख तो हो गई क्योंकि हम लोगों ने देख लिया क्यों दुख होने वाला है।
अहो वत महत् पापम, अहो वत महत् पापम, कर्तुं व्यवसिता वयम्, कर्तुं व्यवसिता वयम्, यद् राज्य सुखलोभेन, यद् राज्य सुखलोभेन, हन्तुं स्वजनमुद्यताः, हन्तुं स्वजनमुद्यताः।
अहो वत महापापम, अहो वट पीटी, हम लोग जो है वत महापापम कर्तुम व्यवसाय वयम। वयम शब्द हम लोग कहते हैं संस्कृत में जब दो आदमी हो, अहम कहते हैं जब एक करने वाला हूँ। यहाँ वयम, अर्जुन कहता और क्लियर कर रहा है, वयम मतलब आप भी साथ में भागीदार हो, किसमें? महत पाप, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं हम लोग, कर तुम व्यवस्थिता, हम लोगों ने निश्चय कर लिया, निश्चय डिसाइड करके तो आए थे लड़ने के लिए, व्यवस्थिता निश्चय करके आए हम। देखो अर्जुन कहता है कि हम युद्ध करेंगे तो महत पाप होगा, और भगवान बोलने जाएंगे बोलेंगे कि अगर आप युद्ध से भाग जाओगे तो महत पाप होगा, ये भगवान बोलेंगे। मगर अर्जुन क्या देख रहा है कि हम कोई ऐसा करने से, ये उसका इमेजिनरी, उसका जो है ये विचार है। जैसे हम पहाड़ के ऊपर जब जाते हैं ना तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती हैं, तो जरा इस तरफ देखते हैं तो हमको डर लगता है, खाई की तरफ अगर देखते हैं तो हमको डर लगता है, इसको भी उसी तरह से ये डर लगा हुआ है। ये सोच रहा है धर्म क्या है, धर्म का युद्ध करने के लिए आए, वो नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा राज्य सुख देख रहा है ना, हमको विजय नहीं चाहिए, राज्य सुख नहीं चाहिए। कभी एक बार उसने कहा कि हमको धर्म युद्ध करने आए थे, अब मैं धर्म नहीं देख रहा हूं, मैं राज्य सुख देख रहा हूं, नहीं एक बार भी मन में नहीं आ रहा उसके। यद राज्य सुख लोभे न हंतु स्वजन मुद्यता, हम लोग राज्य सुख लोभ के लिए जो है ये करने जा रहे हैं, अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं, हंतु स्वजन मुद्यता, हम तैयार हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, महत पाप, बहुत बड़ा पाप होगा, और ये पाप मैं अकेला नहीं करने जा रहा हूँ, हे भगवान आप भी इसमें मेरे हिस्सेदार हो। एक है ना एडिंग एंड एबेटिंग इन द क्राइम, सारथी तो आप हो ना, तो आप भी हमारे साथ हो। अच्छा फिर
यदि माम प्रतिकारम, यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः, धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्, तन्मे क्षेमतरं भवेत्।
तन्मे क्षेम तरम, ये बहुत अच्छा होगा। क्या कि यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाने, अगर मैं बिना शस्त्र के, और उधर कौरव पक्ष वाले वित शस्त्र, धार्तराष्ट्र रने हन्यु, वो अगर मेरे को मार दें, मतलब मेरे हाथ में शस्त्र नहीं, वो लोग शस्त्र से मेरे को अगर मार दें, तो कहता है तन्मे क्षेम तरम भवे, ये बहुत अच्छा होगा। पाप से तो बच जाएंगे, पाप तो नहीं होगा, ये उसके विचारधारा। देखो आप लोग सब सहमत हो जाओगे उसकी विचारधारा से कि नहीं ठीक कह रहा है, इतनी विधवाएं हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना कुल चाहे कुल नाश, ये धर्म सब ठीक है एकदम, मगर अगर धर्म युद्ध ना हो तो फिर अधर्म रहेगा, बढ़ेगा कि कमती होगा? और बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, कैसे खत्म होगा? फिर युद्ध करना ही होगा, धर्म युद्ध के बिना वो सही नहीं बैठेगा। फिर इसके बाद में लास्ट श्लोक में कहते हैं
संजय उवाच,
संजय उवाच
एवं उक्त्वा अर्जुन संखे, एवं उक्त्वा अर्जुन संखे रथोपस्थ उपाविशत, रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापम, विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः, शोक संविघ्न मानसः।
एवं उक्त्वा अर्जुन, ऐसा अर्जुन के कहने के बाद संखे रणभूमि में रथोपस्थ उपाविशत, रथ के ऊपर में अर्जुन उपाविशत बैठ गया। देखो बात नहीं चल रही, अब संजय कह रहा है क्या हो रहा है, रनिंग कमेंट्री हो रही है। अब संजय कह रहा है कि अब जो अर्जुन बैठ गया, बैठने के साथ क्या है, विसर्जन ससरम उसने वान को भी रख दिया, चापम धनुष को भी रख दिया, विसर्ज शोक संविघ्न मानस, और मन में शोक विषाद उसके। देखो फिजिकली क्या हुआ, फिजिकली बैठ गया, मन में क्या है, विषाद है, बुद्धि क्लाउडेड है, विषाद के कारण क्लाउडेड है, ऐसा आदमी टोटली सेटर्ड। हमारे पास में तीन ही तो इक्विपमेंट है, शरीर है, मन है और बुद्धि। बीएमआई चार्ट में हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। एंड अर्जुन को क्या हुआ, शरीर से बैठ गया, बॉडी कोलैप्स, माइंड अवसाद, फुल ऑफ सॉरो, शोक, इंटेलेक्ट क्लाउडेड। तो बताओ अर्जुन टोटली सैटर्ड है कि नहीं, टोटली सैटर्ड है। हमें क्या करना चाहिए इस टाइम में, बुद्धि को सारथी बनाना होगा। आपको प्रैक्टिकल टिप यही है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर बुद्धि से काम लें। बुद्धि क्लाउडेड होती है, मगर बुद्धि से विचार करने से आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा। मगर हम लोग ऐसा होता है, सभी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को देखते हैं, हम भी अपने बच्चों को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, बस फंस गए इसके अंदर में, क्लाउडेड, बुद्धि से काम नहीं लेते। तो ये रोग हम लोग सबके साथ में है। तो क्योंकि इतनी दूर तक जो पढ़ा ना हमने आज, ये 47 श्लोक तक और नेक्स्ट 10 श्लोक तक, और जो है ना, शंकराचार्य जी ने कोई कमेंट्री इसके ऊपर नहीं लिखी है। शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री शुरू की है श्लोक नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 के बाद से। इतनी जितनी कुछ जो अभी जो बताया जा रहा है और 10 श्लोक जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर में, उतने तक जो है शंकराचार्य जी ने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने केवल एक सेंटेंस के अंदर इस सारी चीज को समराइज कर दिया। वो सेंटेंस क्या है वो हम अगले छत्र में देखेंगे। एक सेंटेंस के अंदर में समराइज कर दिया उन्होंने शंकराचार्य जी ने।
ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।
ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
कल का अनाउंसमेंट आप कर दीजिए। हाँ।